वो प्रॉपरली सीन हो रहा है अभी फेसिया पे, क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक स्किन आ रही है।
नहीं नहीं मुझे पूरा प्रॉपर शो हो रहा है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं अपने एंड से?
हाँ आप भी कर सकते हो।
मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग का कहीं ऑप्शन शो नहीं हो रहा, आप ही कर लो।
या ठीक है, मैं नोट कर लिए।
जी जी ठीक है।
Hey guys, what's up? This side is Giriraj sir and welcome to another new series of 30x Learning. And आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो स्पेशल गेस्ट हैं, बिकॉज ही इज़ द यंगेस्ट फ्रीलांसर राइटर एंड ऑल्सो इज डीलिंग विद मैनी फ्रीलांसर्स क्लाइंट्स। एंड कॉन्टेंट राइटिंग इज़ द टफ जॉब फॉर एनी फ्रीलांसर्स के लिए भी, एंड ऑल्सो क्योंकि रिजल्ट ला के देना फ्रीलांसर्स को। तो गाइज लेट्स डायरेक्टली टॉक्ड विद जानवी। हे जानवी, first of all thank you so much for accepting my invitation and come in the my show.
thanks a lot for this introduction, it's meant a lot. And I know ki youngest content writer to nahi bolna chahiye, because mere se bhi young bahut sare acche content writers hai, to theek hai, but I started too young, I know this, but youngest nahi hona chahiye, because hamare se bhi bahut acche acche youngest content writer hai.
Yeah, good. And Janvi, tell me about self something, how to start and how can you start and how to like aapki sari journey thoda bahut ki aapne kaise start kiya and how to pick your first client and what journey behind the content writing aapne start kiya hai.
मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था एंड मैंने फालतू साला ब्लॉग से स्टार्ट किया था एंड इट्स अ मैंने वहाँ एज अ गेस्ट पोस्ट स्टार्ट किया था, मैंने अपना पोर्टफोलियो रेडी करने के लिए, जस्ट बिकॉज यू नो कि हमें कहीं क्लाइंट्स को अप्रोच करने के लिए पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ता है, तो उसके लिए ना हमने फालतू साला डॉट कॉम लिया था. उसमें मैंने कई सारे स्टार्टिंग में पोस्ट अपलोड करना चाहे, यू नो जब मैं सीख रही थी कि कैसे लिखते हैं कैसे क्या करते हैं, तो उस टाइम पे स्टार्टेड रीडिंग कि कौन कौन से कैटेगरी हैं जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ. तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट ब्लॉग्स कि होते क्या हैं, ब्यूटी ब्लॉग्स क्या होते हैं. फर्स्ट जो मेरा ब्लॉग था वो ब्यूटी पे था एंड बिकॉज यू नो गर्ल्स का हमेशा एक इंटरेस्ट रहता है, हमेशा एक डिविएशन रहता है ब्यूटी पे, तो मैंने भी ब्यूटी ब्लॉग से स्टार्ट किया था. और फिर गेस्ट ब्लॉग से स्टार्ट करते करते मैंने अपना पोर्टफोलियो रेडी किया. उसके बाद यू नो क्लाइंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ वहां से. एट द मोमेंट जब मेरा पोर्टफोलियो रेडी हो गया तो आई हैव दैट मच ऑफ स्टफ कि मैं क्लाइंट्स को दिखा पाऊँ कि नहीं नहीं ये, बिकॉज यू नो जब आप स्टार्टिंग में होते हो ना, अगर आप बिना पोर्टफोलियो के स्टार्ट कर रहे हो तो आई थिंक कि क्लाइंट्स बिलीव नहीं करते. और स्पेशली अगर आप के ब्लॉग्स के नीचे आपका नाम है ना, आपको प्रॉपर क्रेडिट दे रहा है अगर वेबसाइट, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा यू नो अपॉर्चुनिटी हो सकती है. तो मैं तो सबको यही एडवाइस करूंगी कि गेस्ट ब्लॉगिंग से स्टार्ट करें, बिकॉज वो आपका करियर बूस्ट कर सकती है. और भले ही गेस्ट ब्लॉगिंग बहुत सारे ऐसे ब्लॉग प्लेटफॉर्म हैं जो पे नहीं करते इनिशियली, बिकॉज यू आर यू नो वेरी बिगिनर टू देम, तो लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज वो आपको क्रेडिट दे रहे हैं. और क्रेडिट से बड़ा नहीं होता कुछ भी पोर्टफोलियो में, बिकॉज यू नो क्लाइंट एग्जीक्यूशन में बहुत काम आता है ये क्रेडिट. तो फिर मैंने भी वहां से ही स्टार्ट किया एंड देन कुछ प्लेटफॉर्म थे जैसे लिंक्डइन इंडीड, फिर वहां से मुझे क्लाइंट्स स्टार्ट हुए मिलना, पिचिंग करना एंड ऑल दोस थिंग्स. मैंने वहां से धीरे धीरे करके सीखा कि क्लाइंट पिच कैसे करते हैं. स्टार्टिंग में तो क्लाइंट पिचिंग नहीं आती थी उतनी, आई जस्ट की नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, बट फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर करके और कैटेगरीज लेके, बिकॉज मैं टेक कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, आईटी कैटेगरी से, बट मार्केटिंग का फंडा मेरे को नहीं पता. तो फिर धीरे धीरे करके आया कि कैसे मार्केटिंग का फंडा कैसे यूज करते हैं, फिर उसके बाद कंटेंट राइटर, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, फिर एसईओ एसएमएम एसएमओ ये सब कुछ फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर करके आया. तो यही अभी तक चल रहा है.
या थैंक यू, बिकॉज ना स्टार्टिंग में लाइक पोर्टफोलियो काफी मैटर करता है, लाइक या तो आपको कोई क्रेडेंशियल दे रहा है या फिर हम ना जस्ट लाइक मीडियम वगैरह यहाँ पे इस तरह कहीं पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस टाइम पे कोई पोर्टफोलियो या फिर रिव्यूज हमें मिल जाता है तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है क्लाइंट्स को दिखाने के लिए कि जैसे या उसका भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. एग्जैक्टली
पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेस्ट मैं कहूंगी मीडियम या योर स्टोरी है, बट यू नो योर राइटिंग शुड बी इनसाइटफुल. आपकी राइटिंग बहुत इनसाइटफुल होनी चाहिए इन अच्छे वेबसाइट्स के लिए जो हाई डीए अथॉरिटी होती है. लाइक यू नो अच्छे वेबसाइट्स के लिए आपका पास जो राइटिंग होगा ना आपका, वो बहुत इनसाइटफुल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए. आप जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, क्योंकि वहां आप एसईओ पर्पस से नहीं लिख रहे होते, और जब आप एसईओ पर्पस से राइटिंग करते हो तो आप क्रिएटिविटी अपनी लिमिट कर सकते, लिमिट हो जाती है. आप जितना भी ट्राई करो, आपको अगर क्लाइंट से मिल गया कि आपको यही कीवर्ड्स यूज करने हैं, तो यू कांट यूज कुछ और इनोवेटिव. तो मैं स्टार्टिंग में प्रेफर करूंगी अपनी जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो आप दिखाओ, विदाउट यू नो अप्लाइंग एनी टैक्टिक्स ऑफ एसईओ. तो आप एसईओ ना दिखा के अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, योर स्टोरी, मीडियम एंड बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं ऐसी, तो आप वहां पे दिखाओ. आप अप्रोच करो लोगों को कि मैं आपको फ्री में दूंगी गेस्ट ब्लॉगिंग, एज अ गेस्ट ब्लॉगर मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ. तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके राइटिंग सैंपल्स को देख के, अगर आपके पास उतना टैलेंट है या फिर आपके पास उतना राइटिंग का पैशन है, अगर आपको सही तरीका भी नहीं आता है और यू आर जस्ट पैशनेट अबाउट समथिंग, तो वो तरीके खुलते चले जाते हैं और फिर आप स्टार्ट कर सकते हो किसी गेस्ट ब्लॉगिंग से. आप पोर्टफोलियो बना सकते हो और फिर उसके बाद यू नो आप क्लाइंट एक्जीक्यूशन, आपको खुद ही लीड्स मिलेंगी, आप खुद ही आपके पास क्लाइंट अप्रोच आएंगे.
पैशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप जो चीज आप कर रहे हो उसमें लाइक कितने आप पैशनेट हो जाए, कितने लाइक या एग्जैक्टली
एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आप पैशनेट ही नहीं होगे तो आप कभी
पैशनेट करते हो तो ऑटोमेटिक सारी चीज हो जाती है.
या एग्जैक्टली
आल्सो समवन जस्ट लाइक यू स्टार्ट इनिशियल टाइम पे, तो हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग इन इनिशियल टाइम पे. अगर जस्ट लाइक किसी को इनिशियल टाइम पे कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करना है, सपोज उसको कुछ नहीं आता और उसने ऐसा कि हाँ मुझे कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करना है, तो हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एंड लाइक कहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग पे ऑनेस्टली एक वो डायरेक्ट गेस्ट ब्लॉगिंग अप्रोच कर नहीं सकते, क्योंकि गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए भी पूरा प्रॉपरली स्ट्रक्चर सारा आना चाहिए जो कंटेंट राइटिंग का होता है, तब जाके वो लोग एक्सेप्ट करते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग. तो हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इन इनिशियल टाइम पे अगर किसी को कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करना हो.
उसके लिए ना मैं प्रेफर करूंगी कि आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढो कि आपका कौन सा नेचर है जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बिकॉज जब आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगे ना तो आपको उसमें आइडिया बहुत अच्छे अच्छे आएंगे. और अगर आपकी राइटिंग आपको इंसाइटफुल बनानी है, आपको क्रिएटिव बनानी है, तो योर आइडिया शुड बी वेरी यूनिक, योर आइडिया शुड बी वेरी ओरिजिनल. जो आपका बेसिक आइडिया होगा किसी भी पोस्ट को लेके, किसी भी नॉर्मल पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट से लेके ब्लॉग तक को लेके, आपका आइडिया बहुत इनोवेटिव होना चाहिए और बहुत क्रिएटिव होना चाहिए. उसके बाद आपके लिए अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंग्लिश, मतलब आप पता है उस ब्लॉग्स को पढ़ सकते हो. जैसे जस्ट लाइक मी, अगर मैं ब्यूटी ब्लॉग में सबसे पहले इंटरेस्टेड थी, अभी तो ऐसा चल रहा है कि अभी एआई से लेके रोबोटिक्स से लेके मेरे को शायद ही कोई ऐसा नीच बताओ जिसमें मैंने ना लिखा हो, तो लेकिन मैंने ब्यूटी ब्लॉग से स्टार्ट किया. मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, आप राइटर के सिर्फ ऐसे नहीं कि जैसे रीडर्स पढ़ रहे हो, यू शुड बी लाइक जैसे आप उस राइटर का जानना चाहते हो कि व्हाट इज दैट यू नो वो दैट टैक्टिक्स जो उसने लगाई होगी, अप्रोच कि कैसे उसने व्यूअर को कन्विंस किया कि वो स्क्रॉल होकर नीचे तक आए. तो आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा, उसके राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छा उसने ये वर्ड लिखा तो उसका ये मतलब था और इस वजह से ही मैं स्क्रॉल करके नीचे आई हूँ. तो आपको वैसे एनालाइज करना पड़ेगा राइटिंग से ज्यादा और रीडिंग से ज्यादा. मैं कहूंगी कि आपको ब्लॉग्स एनालाइज करने चाहिए स्टार्टिंग में, तब आप जाकर वो अपना राइटिंग पावर निकाल पाओगे आगे. और फिर उसके बाद यू नो आप बस लेके बैठ जाओ, आप जब आपके माइंड में जब भी आए, आप टाइम मैटर नहीं करता, रात को 2 बजे भी थॉट आए तो जस्ट आप उस थॉट को लो और उस थॉट से जो भी बना सकते हो इनोवेटिव बनाओ. बिकॉज यू नो प्लैगरिज्म और कॉपी पेस्ट करना और किसी का भी आइडिया लेना इस वहां पे वो आपकी ग्रोथ रोक देता है. तो अगर आपको एज अ स्टार्ट करना है और आप रियली उस चीज के लिए पैशनेट हो, तो बस आप क्रिएटिव थॉट्स लाओ और उसके बारे में अपने मैजिकल वर्ड्स लगाकर या जितना भी आप लगा सकते हो. स्टार्टिंग में सबकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, या फिर कह सकते हैं कि उतनी मतलब उतने प्रोफेशनल नहीं होते हैं सब, लेकिन हम स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे इनोवेटिव आइडिया से. उसके बाद बहुत सारे टूल्स आते हैं जो आपको ग्रामरली है और भी हेमिंगवे है, प्रो राइटिंग एड है, ऐसे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे जहां पे भी आपकी मिस्टेक होगी, जो ग्रामर मिस्टेक होगी या फिर कई बार एडजेक्टिव या प्रोनाउन को लेके बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं इनिशियली स्टेज पे. पैसिव स्टेज एक्टिव और इन सब चीजों को लेके जितनी भी मिस्टेक्स होती है ना वो ग्रामरली सही कर देता है और बहुत सारे से टूल्स हैं. बट यू नो आप डिपेंड नहीं करना, ये सबसे बड़ी मिथ है और सबसे ज्यादा एडिशनल टिप है कि स्टार्टिंग में ना मैंने बहुत सारे राइटर्स को देखा है जो बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, बट वो बहुत जल्दी इन एप्स पे ना डिपेंड हो जाते हैं. और जब आप इस पे डिपेंड हो जाते हो ना आप एट द मोमेंट आप अपनी ग्रोथ किल कर देते हो वहां पे, तो वो चीज चांस कम हो जाता है आपका. क्योंकि जब आप अपने से खुद से पहले प्रूफ रीड करो, आप कम से कम अपने ब्लॉग्स को स्टार्टिंग में आप उसको 10 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपको खुद से लगे कि हाँ अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तब जाकर आप टूल पे चेक करो और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा आपकी कितनी सारी मिस्टेक जो आपकी आंखों ने छोड़ दी थी वो आपके टूल ने पढ़ ली. उसके बाद आप स्टार्ट करो एनालाइज करना अपनी गलतियां कि जैसे अभी यहाँ पे एग्जेक्टिव में एक मिस्टेक होगी तो ठीक है आप आगे से आपको उस पर और ज्यादा ध्यान देना. आप अपनी मिस्टेक्स जब तक एनालाइज नहीं करोगे आप ग्रो नहीं कर सकते. और आप ग्रो वैसे ही करोगे जस्ट फॉलो वन कॉपी राइटर कंटेंट राइटर जिसका भी राइटिंग आपको बहुत अच्छा लगता है. जैसे मेरे लिए भी बहुत सारे हैं, अनिल पटेल सर के ब्लॉग्स और इनका राइटिंग बहुत अच्छा लगता है. आई जस्ट फॉलो हिम एंड जॉन मोरो smartblogger.com के. एंड लाइक इनकी राइटिंग्स इनकी कॉपीज इतने इंटरेस्टिंग होते हैं ना, इतने ज्यादा इंसाइटफुल होते हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते इनके ब्लॉग्स क्लिक करने से. तो जस्ट आई फॉलो कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका एनालाइज करती हूँ मैं. उसके बाद अगर मुझे आइडिया लेना है ना तो बेस्ट ब्लॉगर्स निकालती हूँ वहाँ के जो उस नीच में काम करते हैं. उसके बाद मैं एनालाइज करती हूँ कि वो करते कैसे हैं. एनालाइज करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत सारे बिगिनर्स को नहीं पता, क्योंकि वो एनालाइज नहीं करते, या इधर दे कॉपी पेस्ट और इधर वो उस आइडिया को लेके बनाना चाहते हैं. तो एनालाइज पहले करना चाहिए. और इनफैक्ट सिर्फ उन ब्लॉगर्स को एनालाइज नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट अपनी ब्लॉगिंग जो भी अपनी राइटिंग्स लिख रहे हो उनको भी एनालाइज करो. पहले खुद से प्रूफ रीड करो बहुत बार, जब आपको लगे कि नहीं इसमें भी मिस्टेक नहीं है देन यू शुड गो विद टूल्स जो अवेलेबल है. उसके बाद भी आपको बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो धीरे धीरे सीखने पे आएंगी. और इंस्टेंट रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड मत करो, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे कंटेंट राइटर करते हैं. बिकॉज यू नो इन दीज डेज अब हर कोई कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करना चाहता है, बट होता क्या है ना वही लोग वही लोग स्टक रह पाते हैं इस चीज में जो इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते. बिकॉज इंस्टेंटली आपको एक साल में तो कोई रिजल्ट उतना अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा. आपको धीरे धीरे क्लाइंट्स अप्रोच तभी आएंगे जब आप इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करोगे. बिकॉज जब आप एक्सपेक्ट कर लेते हो और आपको नहीं होता तो ऐसा लगता है नहीं नहीं आप राइटिंग छोड़ देनी चाहिए, मेरे से नहीं होगा ये. तो आप इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, ये एक साल लेगा आपको वहां पे एस्टैब्लिश करने में, आपको मार्केट करने में, अपना ब्रांड बनाने में आपको एक साल आराम से लगेगा स्टार्टिंग में. तो जस्ट आपको स्टक रहना चाहिए.
देखना है कि इस नूच में लोग ऑलरेडी क्या अच्छा कर रहे हैं. exactly. क्योंकि उनसे लाइक पता चल जाता है अपन को कि यार कि एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं. लिखने से पहले इस लाइक रीड करना चाहिए, लोगों का कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या लिख रहे हैं, उनका फॉर्मेट क्या है, या फिर जैसे लाइक उनका ब्लॉग के बहुत अच्छे रीडर्स आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, जैसे क्या उनका है, तो वो काफी अच्छा है. एंड ऑल्सो अदर क्वेश्चन इसकी लाइक कंटेंट राइटिंग में एक चीज होता है ना जैसे नीच का कंटेंट राइटिंग में भी एंड आल्सो पर्सनल ब्रांडिंग में भी. तो कंटेंट राइटिंग में स्टार्टिंग में लाइक नीच इतना मैटर करता है कि एक नीच पे ही हमें कंटेंट राइटिंग में काम करना चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट नीच पे करना चाहिए?
एग्जैक्टली देखिए नीच का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी राइटिंग पे, क्योंकि जिस नीच पे आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना उसी नीच से ही आप आगे ग्रो करने वाले होते हो. ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में अपना नीच बहुत एक स्टक नीच रखना चाहिए. जैसे जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने ब्यूटी ब्लॉग्स से स्टार्ट किया था. ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ब्यूटी ब्लॉग्स एक महीने सिर्फ ब्यूटी ब्लॉग्स पढ़े. अगर उस टाइम पे अगर आप कोई दूसरे नीच पे कन्वर्ट हो जाओगे तो आप शायद सिर्फ वो चीजें ना एनालाइज कर पाओ, वो डीप एनालिसिस आप शायद छोड़ दो अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारी नीच को कवर करना चाहते हो. मैं कहती हूँ कि आप स्टार्ट एक नीच से करो, फिर धीरे धीरे करके एक्सप्लोर स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ कि आप कित और कौन कौन से ऐसे नीश हैं जो आप जिसपे आप काम कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप उस पर भी लिख सकते हो. और नो मैटर्स कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो उस नीश में, लेकिन अगर आपको और एक्सप्लोर करना है तो जस्ट गिव अ ट्राई. अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा कि हम इस नीश पे भी लिख सकते हैं. बिकॉज जैसे किसी भी अगर मार्केटिंग कोई भी मार्केटर नीश में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और इससे बोल दो कि एआई के ऊपर लिखे तो आई थिंक कि वो खुद ही मना कर देगा. बट आई रिकमेंड कि गिव अ ट्राई, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा ना, कुछ और ट्राई करेंगे. बट स्टार्ट start, you know, exploring yourself first as a writer.
Yeah. क्योंकि स्टार्टिंग में क्या काफी लोग नीच एक पर्टिकुलर डिसाइड करके खुद की लिमिट सेट हो जाती है एक तरह से कि हाँ मुझे लाइक इस फील्ड से एक्स्ट्रा जाने नहीं है, बट हो सकता है आप किसी और फील्ड के लिए काफी और अच्छा लिख सकते हो. तो एक्सप्लोरिंग इज द मस्ट इन द स्टाइल इनिशियल टाइम पे कि आपको अलग अलग फील्ड में ट्राई करना चाहिए, देन फाइनली कंक्लूड कि हाँ मैं इस फील्ड में काफी बेटर हूँ, देन आई विल या गो ऑन माय करियर. या एंड अकॉर्डिंग टू यू लाइक जो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कंटेंट की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए कि जिससे कंटेंट राइटिंग लाइक वहाँ पर, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग में कंटेंट राइटिंग का काफ़ी बड़ा रोल होता है, चाहे वो हम इंस्टाग्राम का कैप्शंस लिख रहे हैं या फिर पोस्ट शेयर कर रहे हैं लिंक्डइन पे या फेसबुक पे, तो उसमें काफ़ी मैटर होता है. तो आपके अकॉर्डिंग उसकी क्या हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग के लिए और नॉर्मल ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि आजकल अभी क्या चल रहा है जैसे कि आई एम आल्सो वर्किंग विद अ कंपनी, तो कि कोरोना का है तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां कोरोना 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 की पोस्ट डाले जा रही हैं, तो लोगों को एक तरह से हैट सी हो गई है उससे कि हर टाइम टीवी भी वही बोल रहा है, जो मतलब जो भी वो चालू करते हैं ना फोन न्यूज तो सब कोरोना कोरोना, तो वो वाला हो गया. तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी और एक कंपनी के लिए भी.
एग्जैक्टली बिकॉज मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि अभी कोरोना की वजह से बिकॉज यू नो उनके हैशटैग इतना ज्यादा ट्रेंड पे चल रहे हैं, तो कंपनियां प्रेफर करती हैं कि अभी जो ट्रेंड पे है एसईओ पर्सपेक्टिव से वो चीज अच्छी है. लेकिन अगर आप एज अ राइटर हो, अगर आप सिर्फ अपनी पर्सनल ब्रांड लिख रहे हो, तो हाँ ठीक है कि आपने एक दो ब्लॉग्स, एक दो कंटेंट अपने रिलेटेड टू स्टफ जो भी आपका चल रहा है करंट ट्रेंड, उससे आपने रिलेटेड कुछ भी एक दो पोस्ट कर दिए. बट अगर आप ये सोचो कि आप सिर्फ एक हैशटैग में ही अपने आप को ट्रेंड देखना चाहते हो बार 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 बार, तो आप अपने फॉलोवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो. अपने फॉलोवर्स को जस्ट गिव वैल्यू, बिकॉज अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो चीज लॉन्ग टर्म रहेगी आपके साथ. तो अगर आप जैसे सपोज कोई डिजिटल मार्केट जैसे आप हो, तो अपना जो भी स्टफ है, जो भी अपनी कंटेंट है, जो भी आपका कंटेंट है, जस्ट आप उसी में स्टक रहो. अगर आप उसमें बीच में कुछ और एकदम से डेवलपमेंट का कुछ भी स्टफ दे दोगे, तो आपके हो सकता है उतने लाइक्स भी ना आए उसमें, हो सकता है कि उतना ज्यादा इनसाइट्स भी ना जाए और ट्रेंड भी नहीं करे. लेकिन आप अपने फॉलोवर्स को कंफ्यूज मत करो. आप अपने यू नो जो भी आपको फॉलो करते हैं, कि जो भी आप पीपल ऑलवेज लुक्ड अप टू यू, कि आप उनको कभी कंफ्यूज ना करो. बिकॉज उससे क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें आप डाउन कर देते हो और इतनी ज्यादा टैक्टिक्स लगती है इन सब चीजों में. जैसे आपने बोला अभी कंपनियां सिर्फ कोरोना कोरोना, तो आई थिंक कि वो एक दो पोस्ट सही है कि अपनी तरफ से कुछ ऐसा इंसाइटफुल डाल देना कि अवेयरनेस के लिए, एक दो चीजें सही है. बट अगर आप उसी पे लगातार ही ट्रेंड करना चाहते हो, तो आप अपने फॉलोअर्स अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए वो चीज अच्छी नहीं होती है.
या एग्जैक्टली. एंड आल्सो लाइक काफी सारे लाइक अभी कोर्सेस काफी चल रहे हैं कि काफी सारे लोग कोर्सेस सेल कर रहे हैं, तो इनिशियल टाइम पे कोर्सेस हेल्प करते हैं या फिर हमें कोर्सेस से ज्यादा लाइक खुद पे ट्राई करना चाहिए, या किस टाइप के कोर्स परचेस करना चाहिए कंटेंट मार्केटिंग के लिए?
जी, मैं आपको एक बहुत ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज ये मेरे अंदर बहुत टाइम से था. मैंने इस पे बहुत सारे पोस्ट भी किए थे, क्योंकि पता है होता क्या है ना, अभी मार्केट में 60% ऑफ द मार्केट सिर्फ फनल्स पे चल रही है, और हम मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग में किसी के पास भी इतना बजट होता है कि वो 4999 का कोर्स है, 5000 का, 6000 का, 10000 का, एक कंटेंट राइटिंग के लिए कोई भी एक बिगिनर के पास इतना बजट होता नहीं है कि वो कोर्स अवेलेबल कर पाए अपने लिए. तो आई थिंक कि और मैं पर्सनली बताऊं, मैंने अभी तक कंटेंट राइटिंग के लिए अभी तक कोई कोर्स बाय नहीं किया. इन बस मैंने कुछ अच्छे कंपनी के कोर्सेज हैं जो काफी अच्छे लेवल पे करा रहे हैं, तो उनको छोड़ के, उनकी ट्रेनिंग्स को छोड़ के, मेरे पास अभी कोई ऐसा सेमरेश और ये जो ऐसे हैं सर्टिफिकेट्स नहीं है. बिकॉज मैंने कभी प्रेफर नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन स्टफ इतना ज्यादा है कि अगर आप एक बार आपको रिसर्च करना आ गया ना, तो आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है. आपको एक बार बस गूगल पे डालना आ गया ना वो चीज, आपको रिसर्च करना आ गया. बिकॉज क्योंकि ये चीज टाइम लेता है, तो लोगों को क्या चाहिए अभी, पीपल आर दे आर सो लेजी मैन कि वो चाहते ही नहीं है कि वो 50th पेज तक जाएं गूगल सर्च रिजल्ट पे. अगर आप 50th पेज तक जाओगे ना, तो आपको वहां से इतने सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे जहां पे आप इतना सब कुछ सीख सकते हो. लेकिन उतना उनको सर्च नहीं करना होता, उनको बस एक यहाँ पे एक बटन क्लिक करना होता है, उसके बाद उनको कोर्स लेना होता है. तो आई थिंक उन पीपल्स के लिए अच्छी चीज है जिनके पास बजट है. लेकिन जिनके पास नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि जस्ट रिसर्च, रिसर्च अबाउट कि आप क्या सीखना चाहते हो, बस आप उसके बारे में रिसर्च करो और इतना ज्यादा फ्री अवेलेबल, आराम से आपको इतने रिसोर्सेज मिल जाएंगे फ्री के कि आपको जरूरत ही नहीं है कोई कोर्स खरीदने की। और सबसे बड़ी बात, आप उनको देखो, एनालाइज करो और तुरंत प्रैक्टिस लगो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस पे नहीं लगोगे तो आपको, आप पता है, भूल भी जाओगे। और सबके साथ ही ऐसा होता है, हम बहुत सारे कोर्सेज ऐसे कुछ साल पहले कर चुके होते हैं बट हम उसमें डेली प्रैक्टिस में नहीं होते, हम भूल भी गए होते हैं कि हमने क्या सीखा था। तो यू नो, कोई भी अगर बिगिनर है तो जस्ट रिसर्च करो आप क्या चाहते हो, रिसर्च करने के बाद उसे तुरंत प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो रिसर्च भी किसी काम की नहीं, आपका टाइम पूरा वेस्ट जाएगा वो। तो जस्ट उसको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप तुरंत प्रैक्टिस करो आप जो भी सीखना चाहते हो। और दूसरी बात, कोर्स अवेलेबल होते बहुत सारे हैं, अगर आपके पास बजट है तो बहुत सारे कर सकते हो आप, कोर्स अवेलेबल बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ऐसे कोई भी कोर्स परचेज करो, जस्ट रिसर्च इट, गूगल के पास सब कुछ है फ्री में।
या एग्जैक्टली, एंड आपने ये काफी अच्छा कहा कि आप कोर्स चाहे कोई से भी परचेस कर लो बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो वेस्ट ही है। चाहे आप लाइक अपन खुद जस्ट लाइक काफी चीजें देख लो कि अपन जो 8th 9th 10th में वो काफी चीजें सीखते हैं, काफी चीजें करते हैं, पर कितने परसेंट चीजें अपन को अभी याद रहती हैं उनमें से, कि जो अपन रेगुलरली यूज लेते हैं उनको, कि अगर आप कोर्स सीख खरीद रहे हो किसी भी कोर्स है बट आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो एक तरह से वेस्ट ही है। फिर आपने मनी वेस्ट ही किया, चाहे आप गूगल से सीखो या फिर आप कोर्सेस से सीखो, बट अप्लाई नहीं करोगे तो प्रैक्टिस इज द मस्ट। या एंड आल्सो कि जस्ट लाइक इनिशियल टाइम में सबसे ज्यादा हार्ड होता है लोगों के लिए क्लाइंट्स को पिचिंग करना, एंड आल्सो क्लाइंट्स को पिचिंग करना, साथ साथ क्लाइंट्स ढूंढना। So what's your experience on first time pe clients ko pitch karna, and also how can such freelancing clients for content writing?
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आई थिंक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बिकॉज मैंने लिंक्डइन पे इतने सारे इनबॉक्स में इतने सारे मैसेजेस थे कि मुझे काम चाहिए, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे लिंक्डइन इनबॉक्स पे। तो मुझे लगता है कि मुझे इसका आंसर बहुत अच्छे से देना चाहिए, ऑनेस्टली देना चाहिए। और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती, पहली बात, जो भी ऐसे पोस्ट आते हैं, यू नो, हिडन ट्रिक्स, हिडन टिप्स कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, यू स्टार्ट लर्निंग और आपको आप 50,000 अर्न कर सकते हो एक मंथ में ये टिप देख के, तो ये सब कुछ एक फनल हो रहा है, कुछ नहीं होता फनल के अलावा। आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और अपनी कैपेबिलिटी से ही क्लाइंट मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जैसे आपको देख रहे हो, आप पहले अपने कोई नीच लेगा, ठीक है, उसके बाद आपने अपने सैंपल लिखे, सैंपल लिखो, आप चाहे पब्लिश कर पाओ चाहे ना कर पाओ, हो सकता है कुछ गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे आपने पब्लिश कर दिया हो, कुछ ना भी किया हो, लेकिन आपके पास उस नीच से रिलेटेड जो भी क्लाइंट मांग रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर क्लाइंट डेवलपिंग का है, अगर एआई का क्लाइंट है, तो आपके पास उसका थोड़ा सा सैंपल होना चाहिए। तो उससे होता क्या है ना कि कुछ लोगों ने उस नीच पे कभी नहीं लिखा होता है और कुछ लोगों ने लिखा होता है। और सपोज अगर उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अगर 10 कंटेंट राइटर्स ने अप्लाई किया है, और अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अभी तुरंत सैंपल लिख सकते हो, और आप, आपके पास उस स्टफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है पहले, उस नीच से रिलेटेड कोई स्टफ नहीं है पहले, तो जस्ट आप 200 वर्ड्स का ही सैंपल लिखो, बट लिखो, क्योंकि उससे होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करोगे, आप अपनी लिमिट आगे तक बढ़ाओगे, और सेकेंड थिंग, क्लाइंट भी कन्विंस होगा कि नहीं, इसने एआई पे लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो उसी को लेगा जिसने उस नीच में, उस पर्टिकुलर उस कैटेगरी में काम किया होगा पहले। तो अगर किसी और ने किसी और कैटेगरी में काम किया है तो वो उसे प्रेफर नहीं करेगा। तो जस्ट वो क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट हो आपके पास, उसके लिए या तो पहले से पब्लिश कंटेंट होना चाहिए, और अगर नहीं है आपके पास तो डोंट वरी, आप सिर्फ 200 से 500 वर्ड्स का कुछ भी लिख दो, ताकि उन्हें पता चल जाए कि नहीं, आप इस चीज में लिख पाओगे, ठीक है, आपने ये लिखा। एंड देन उसके बाद आप पिच कर सकते हो कि आप पहले स्टार्टिंग में अपनी कॉस्ट इतनी हाई मत रखो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में उतनी हाई रखोगे तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो भी नहीं है, आपने कैटेगरी में काम भी नहीं किया है, उनके उस बाद आपकी कॉस्ट भी हाई है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई क्लाइंट आपको प्रेफर करेगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही इतने सारे कंटेंट राइटर्स हैं मार्केट में अवेलेबल। तो ठीक है, आप अपनी कॉस्ट लोगों से थोड़ा सा कम रखो स्टार्टिंग में, जब आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है उतना, जब आपके पास उतना काम नहीं है, तो आप थोड़ा सा कम रखो, आप उसी कैटेगरी से मेक श्योर कि आप उसी कैटेगरी से रिलेटेड उसे सैंपल दो। अगर वो एआई के लिए मांग रहा है, आप ब्यूटी ब्लॉग का सैंपल दे रहे हो, तो वो आपकी वहीं पर रिजेक्ट कर देगा आपको, ठीक है। तो क्लाइंट ऐसे एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके, और सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में आपको बहुत पोलाइट टोन में बात करनी होती है। स्टार्टिंग में क्या, मैं अभी भी करती हूँ और सारे राइटर्स ही ऐसा करते हैं, जो भी सक्सेसफुल राइटर्स हैं आज, बहुत ही पोलाइटली और बहुत पेशेंस के साथ। कई बार हमारे साथ भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें पेमेंट नहीं मिलती है, हम इतना सारा काम कर चुके होते हैं, हमें पेमेंट नहीं मिलती, फ्रीलांसिंग में सब कुछ चलता है, बहुत ज्यादा ऐसा मूवमेंट आते हैं कि ऐसा लगता है फ्रीलांसिंग नहीं करनी है, फुल टाइम ही कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा हो जाता है कि कभी 6-6 दिन पेमेंट नहीं आ रही है, बहुत लेट हो जाता है और बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है कि डेडलाइंस बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है। तो ये सब एक पार्ट है पूरी जर्नी का, मतलब आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि आप वहां से कहो कि नहीं नहीं अब नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये सब कुछ एक जर्नी का पार्ट है, दिस ऑल द जर्नी पार्ट। और उसके बाद आप एग्जीक्यूशन ऐसे ही कर सकते हो, पोलाइट टोन में बात करो, आप उनसे पहले उनको रिलेटेड स्टफ ही दो जो भी वो चाह रहे हैं, तो वहां से आपको क्लाइंट्स मिलने लगेंगे धीरे धीरे करके। फिर अपने क्लाइंट से फीडबैक लो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने क्लाइंट से फीडबैक लो। आप उसे दिखा, अब नेक्स्ट टाइम कोई उससे रिलेटेड आए तो आप उन्हें दिखा सको कि नहीं आपके पास पॉजिटिव फीडबैक है अच्छे अच्छे। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो बहुत सारे इनिशियल राइटर्स को करना चाहिए और आई थिंक वो बहुत मिस कर देते हैं। मैंने बहुत सारे राइटर्स को सब देखा है। आप अपने क्लाइंट से फीडबैक लो, पोस्ट करो उसे, आप दिखाओ कि नहीं आप जेन्युइन हो, बिकॉज मार्केट में इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे चीजें भी चल रही हैं जो जेन्युइन नहीं है। तो जस्ट आपको अपनी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको फीडबैक लेने पड़ेंगे। और अगर निगेटिव फीडबैक भी है तो आप उसे पोस्ट नहीं करना चाहते, डोंट डू इट, लेकिन आप उस पर काम करो। अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, अगर यू आर नॉट ओपन टू लर्निंग, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज अगर जस्ट एन एग्जांपल, आपने कुछ भी कैटेगरी होगी पहली बार तो कभी ना कभी कोई स्टार्ट करेगा ही उस कैटेगरी में। तो अगर आप उस कैटेगरी में काम कर रहे हो, आपको नेगेटिव फीडबैक भी मिलता है, कई बार ऐसा होता है, मुझे भी मिला है, सबको मिलता है, ठीक है, ये बहुत जेन्युइन पार्ट है। वहां पे डिसहार्टेड होने की कोई जरूरत नहीं है, गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है कि ठीक है। अगर सबसे पहले होता है यू राइटिंग आर नॉट अप टू द मार्क, वी कांट यूज इवन सिंगल वर्ड फ्रॉम दिस, ऐसे करके बहुत सारे क्लाइंट्स बोल देते हैं। तो ठीक है, इट्स अ पार्ट, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो और अपनी गलतियां देखो। अगर आप अपना देखोगे ना कि नहीं नहीं यार मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, तो क्लाइंट ऐसे बोल के चला गया, तो नहीं होगा कभी। कुछ ना कुछ तो होगा जिसने क्लाइंट ने बोला, हो सकता है आपने डेडलाइन क्रॉस कर दी हो सकता है उसको सच में कंटेंट नहीं मिला हो पर्सपेक्टिव से या पॉइंट ऑफ व्यू की भी कई जगह बात आ जाती है। तो जस्ट ओपन टू लर्निंग, हमेशा एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो और जस्ट ओपन लो कि आप क्या कर रहे हो, हमेशा एक्सप्लोर करो और लर्न करो, फीडबैक जरूर लो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इट डजंट मैटर जरूर, और पॉजिटिव है तो जस्ट अपलोड इट ताकि ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड हो नेक्स्ट क्लाइंट से। तो हो सकता है आप आगे ना प्रेफर मिले कि नहीं ठीक है ये जेन्युइन है तो इसको दे सकते हैं काम।
या गुड, इसलिए आपने ये चीज काफी अच्छी बोली क्योंकि बिकॉज़ काफी लोग होते हैं जो फीडबैक पे इतना नहीं देते हैं, या वो जैसे कंटेंट राइटर हो या लाइक SEO कर रहा है या कुछ भी करना है, लाइक फीडबैक इज लाइक मस्ट इम्पोर्टेंट। जबकि आप फीडबैक से लाइक आपको नेक्स्ट क्लाइंट्स की भी अच्छे से मिल जाते हैं और आपको खुद को पता चलता है फीडबैक या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव इज गुड बट नेगेटिव आल्सो इज मोर गुड, वो आपके लिए और अच्छा है, आपको पता चल रहा है एग्जैक्टली कि आपके अंदर ये चीज है जो आपको इम्प्रूव करना है, और तो आपको तो लाइक नेगेटिव ज्यादा खुश होना चाहिए कि चलो मुझे और अभी भी स्ट्रगल करने की नीड्स है कि मुझे और करना पड़ेगा कुछ। एंड आल्सो सेकंड थिंग, लाइक आपने बोला कि पोलाइटली, जैसे लाइक एक तरह से पोलाइटली का मतलब हो गया कि रिलेशनशिप बिल्ड करना, कि ये नहीं कि क्लाइंट्स के एक तरह से कि सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं कि सम टाइम लेट हो जाते हैं तो हो सकता है उसका कोई इशू हो या उसकी कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से वो लेट हो गया पेमेंट्स में या अदर थिंग्स में, तो भी मैं रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स ताकि उनसे अच्छा रिलेशन बना सकें। एंड आल्सो मैनी पीपल्स आर सजेस्टेड कि इनिशियल टाइम में हम लोगों को कुछ फ्री में भी काम करना चाहिए, अगर सपोज हमें नहीं मिल रहा है तो एक दो प्रोजेक्ट्स हम अगर फ्री में करते हैं किसी के लिए, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट कि ये अच्छा है या फिर पेड करना चाहिए हमें?
एग्जैक्टली, बहुत से लोग ओपन नहीं होते, मैंने इसे बहुत लोगों को देखा है। मैंने बोला कि मेरे पास काफी ज्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर काम है तो दे दीजिए, अगर ऐसा कुछ है आपको नीड है सर्विस की, मैंने कहा ठीक है अगर आपके पास सैंपल है तो आप मुझे दे दो एक बार राइटिंग। अगर आप भी हो गया, आप अपनी जगह स्विच करके देखो, आप अपनी जगह स्वैप करके देखो। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए होगा तो क्या आप एक ऐसे राइटर को प्रेफर करोगे जिसके पास कोई राइटिंग नहीं है पहले? तो आप खुद नहीं प्रेफर करोगे, तो जस्ट स्वैप योर सेल्फ। कभी कभी ऐसा होता है कि यू नेवर नो कि कभी भी क्लाइंट कौन सा आपके पास तब अनएक्सपेक्टेडली आ जाए, आप जब बिल्कुल आपके पास कोई काम ना हो, हो सकता है वो क्लाइंट तब काम आ जाए। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पास बहुत अच्छे और जेन्युइन क्लाइंट्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और प्लस जब भी मुझे नीड होती है, अगर मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर मुझे कई पॉइंट पे ऐसा है कि मेरे पास एकदम से कोई काम बंद, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, जस्ट ठीक है मैं एक वीक के लिए फ्री हो गई, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं उनसे कभी भी मैं पूछ सकती हूँ कि अगर है, अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज तो वो हमेशा हेल्प करते हैं. तो आप कभी यू नेवर नो कि कौन सा क्लाइंट आपके कब काम आ जाए. तो जस्ट स्वैप योर सेल्फ. आप खुद देख के देखो क्या आप ऐसे राइटर को प्रेफर करोगे अपनी वेबसाइट के लिए जिसने कभी कुछ लिखा ना हो. और अगर आप फ्री में लिखने को भी नहीं तैयार हो, आप फ्री में सैंपल लिखने को भी नहीं तैयार हो स्टार्टिंग में. और मैं एक चीज और बता दूं, ये चीज देखने के बाद बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो मेरे दिमाग में अभी भी आया, क्योंकि इंटर्नशाला और ऐसे कई सारे जगह बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको 1000-1000 वर्ड का सैंपल लिखने को देती हैं. जस्ट एज अ सैंपल के नाम पे वो पूरा पूरा ब्लॉग लेती हैं आपको बिना क्रेडिट के. आपको पोस्ट भी कर सकती हैं बिना क्रेडिट के आप, और बाद में बोल देती हैं योर कंटेंट इज नॉट यू नो टू मच. वो ऐसा था ही नहीं बिल्कुल कि हम उसे अपलोड भी कर पाए. योर कंटेंट इज नॉट अप टू द मार्क. और फिर वो मोमेंट होता है कि अरे 1000 वर्ड का सैंपल तो प्लीज रिकमेंड करती हूँ मैं किसी को. 1000 वर्ड का सैंपल नहीं चाहिए होता है. सैंपल कभी भी 200 वर्ड से 300 वर्ड के बीच में ही होता है. और लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में आपके पास कुछ नहीं है पहले को दिखाने के लिए तो तब आप लिख सकते हो, लेकिन कंपनी के लिए मत लिखो. तब आप अपने लिए लिखो, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए. लेकिन किसी कंपनी के लिए आपको 1000 वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है एट द नेम ऑफ द सेक ऑफ सैंपल. तो कभी भी वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज 60% ऑफ द कंपनी यही कर रही है कि वो इंटर्न्स को हायर करती हैं, वो उनके पास जितने एप्लीकेंट्स आते हैं वो 1000-1000 वर्ड्स का निकालती है और उनका एक मंथ का काम हो गया. तो आपको स्टार्टिंग में ये नहीं करना है, आपको उन फनल से बचना है. और उसके बाद आप अगर आपको सैंपल लिखने हैं तो आप अपने लिए लिखो. पोर्टफोलियो लिखने तो गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए लिखो या फिर अपने लिए लिखो, इन्हीं दोनों में से लिखो.
जस्ट लाइक मार्केटिंग हुआ, जस्ट लाइक कॉन्टेंट मार्केटिंग हुआ या लाइक कुछ भी मार्केटिंग हुआ, तो मार्केटिंग में एक वर्ड फेमस होता है ROI. तो व्हाट्स द लाइक आपके को ROI लाइक क्या होता है, लाइक हाउ कैन डिसाइड ROI ऑफ कॉन्टेंट, कि मैं जो कॉन्टेंट लिख रहा हूँ किसी कंपनी के लिए ब्लॉग लिख रहा हूँ या फिर किसी फेसबुक के लिए एड के लिए कॉपी लिख रहा हूँ, तो उसमें ROI का क्या लगा, हाउ कैन कैलकुलेट योर ROI ऑफ कंटेंट, कि मैं अगर क्लाइंट्स मुझे इतना पे कर रहा है तो बदले में मैं उसको क्या बेनिफिट दे रहा हूँ या फिर किस तरह से उसको बेनिफिट दे सकता हूँ उस कंटेंट के थ्रू, जो उसका पर्पस है या जो उसका गोल है वो अचीव कर सकता हूँ.
ये चीज स्टार्टिंग में डिपेंड करती है. जब आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे होते हो तो आपको तब इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना होता है, अपनी स्ट्रैटेजी उस तरीके से बिल्ड करनी होती है. एंड सेकंड थिंग इज दैट कि कभी भी पूरा एक क्रेडिट राइटर नहीं ले सकता एक वेबसाइट को पूरा अच्छे से, यू नो, उसकी रैंक बढ़ाने में, उसके एलेक्सा रैंक बढ़ाने में, उसको सक्सेसफुल बनाने में उस बिजनेस का. कभी भी कंटेंट राइटर का पूरा पूरा हाथ नहीं होता. डिजिटल मार्केटर का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर हम कंटेंट दे रहे हैं तो अगर हम वो सही टारगेट ऑडियंस के पास नहीं पहुंच रहा है तो हमारा कंटेंट बेकार है, चाहे हम उस कंटेंट को कितने अच्छे से लिख लें. ठीक है, और एक मार्केटर के पास वो कंटेंट जाता है फिर वो उसे अच्छे से मार्केट करता है, इट्स डिपेंड. तो कभी भी राइटर ROI का क्रेडिट या फिर कभी भी एक राइटर एक सक्सेसफुल बिजनेस का क्रेडिट नहीं ले सकता. ऑल्दो एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है कि अगर आपके पास अच्छा कंटेंट ही नहीं होगा तो आप चाहे जितनी अच्छी मार्केट कर लो वो चीज होगी नहीं. तो ये वाइस वर्सा चलता है. तो ये सिर्फ एक कंटेंट राइटिंग या ब्लॉग्स पे डिपेंड नहीं करता. आई थिंक ये ज्यादा डिपेंड करता है SEO पर्सपेक्टिव से, कि उस वेबसाइट का SEO पर्सपेक्टिव से कैसे वो ROI कैलकुलेट हो रहा है. आई थिंक वो सिर्फ राइटिंग का पार्ट नहीं होता.
या एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू यू, यू आर वर्किंग ऑन लाइक एक दो साल से आप काम कर रहे हो कंटेंट राइटिंग में, और आपको लाइक आपसे बात करके आपको इसे लग रहा है कि यू आर पैशनेट अबाउट कंटेंट राइटिंग, बिकॉज़
या एग्जैक्टली नॉट ओनली कंटेंट राइटिंग, राइटिंग में भी.
तो या तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कि लोगों की क्या लाइक कंटेंट्स को लेके काफी मिथ्स होती है लोगों की, कि कंटेंट कैसे भी उठाया और छाप दिया. ठीक है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू लोगों की जो मिथ्स होती है कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर लाइक वो थोड़ा बहुत कैसे भी सीख लेते हैं या फिर वो लोग कुछ गलती करते हैं, कि लोग होते हैं ना काफी सारे की थोड़ा पढ़ा, ठीक है गूगल पे एक आर्टिकल पढ़ा, और ये होता है आजकल काफी लोगों के साथ, उन्होंने क्या एक आर्टिकल एक पढ़ा कि अब तो मैं भाई किंग हूँ, मतलब मैं किसी भी फील्ड में कंटेंट लिख सकता हूँ, कुछ भी लेके आ जाओ मुझे. या तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन की
एग्जैक्टली दिस इज जस्ट लाइक दैट, कि आप मैथ्स का एक प्रॉब्लम स्टार्टिंग का सॉल्व कर लो तो आपको लग रहा है नहीं अब तो मैं मैथ्स में टॉप करूं. दिस इज जस्ट लाइक दैट. ऐसा कभी भी नहीं होता. अगर आपका एक ब्लॉग अच्छा है, हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आपको उसे कई राइटर्स जस्ट स्टार्ट, यू नो, आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो. मेरे पास भी कुछ ऐसे बैकअप में बहुत अच्छे राइटर्स हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं, और उनका सबका फील्ड अलग है. कोई एकेडमिक अच्छे लिखता है, कोई वेबसाइट कॉपीज अच्छे लिखता है, कोई कुछ. तो यू नो, आप अगर जस्ट मेक श्योर कि आप किसी फ्रेंड से अपना आर्टिकल प्रूफ रीड करा लो एक बारी, तो उससे होता क्या है ना कि हो सकता है कई बार आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है, बट हो सकता है कि उसमें कुछ गलती हो, अभी भी हो. तो मैं रिकमेंड करूंगी स्टार्टिंग में कि आपके पास ऐसे कुछ ट्रस्टेबल राइटर्स होने चाहिए या फिर ट्रस्टेबल फ्रेंड्स होने चाहिए जिन पे आप ट्रस्ट कर पाओ, और आप उनको अपनी राइटिंग्स एक बार प्रूफ रीड करा पाओ, तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एट द कि वंस एक बार में एक क्लाइंट एक्सेप्ट कर ले आपका कंटेंट. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. मिथ्स के बारे में आपने बहुत सही बोला. मिथ्स के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, उनको लगता है कंटेंट राइटिंग कुछ नहीं होता, कोई भी कर सकता है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कॉपी राइटिंग की बात करती हूँ, तो अभी रिसेंटली एक चीज हुई, मार्केटिंग कॉपी और माइक्रो कॉपी दोनों अलग अलग होती है. ठीक है, तो जो माइक्रो कॉपी होती है उसमें बहुत माइन्यूट चीजें देखनी पड़ती है, मार्केटिंग कॉपी नहीं होती. वो जस्ट यू नो, माइक्रो कॉपी बहुत एक छोटी सी, बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करती है. बट लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, इसमें होते क्या है, हम भी कर लेंगे. कोई भी फॉर्म फिल होता है तो उसमें जो भी कंटेंट जाता है, फर्स्ट नेम से लेके सबमिट बटन तक, उसमें भी जो कंटेंट होता है वो भी बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करता है. इवन वो कुछ भी हो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो डेवलपर्स हैं, वो भी ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं ही वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं लिख लूंगा कंटेंट. लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मिथ है. आपको कंटेंट राइटिंग सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी वर्ड्स उठा के देख लिया, आपने एक रेफरेंस लिया और आपने देख लिया. जो कंटेंट राइटर होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं, आप उनको अंडरएस्टिमेट कर रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो. तो अगर हम एट द सेम टाइम उस प्रोफेशनलिज्म पे डेवलपिंग नहीं कर सकते, तो कोई भी डेवलपर एट द सेम मोमेंट पे ऐसी प्रोफेशनलिज्म पे राइटिंग नहीं कर सकता, और ये वाइस वर्सा है. तो ऐसा होता है, आपको एक रेफरेंस से काम नहीं चलता, आपको कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता. बिकॉज अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो गूगल भी बहुत स्मार्ट है, उसके पास भी इतने पेड अवेलेबल टूल्स हैं कि वो आपकी एक मिनट में, अगर आपका आइडिया भी है तो वो वहां से तुरंत पता चल जाएगा कि प्लैगरिज्म कितना है. ठीक है, तो कॉपी पेस्ट काम नहीं करता फर्स्ट ऑफ ऑल. और मिथ सबसे बड़ी कि कोई भी कंटेंट राइटिंग कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है, बट आपके पास स्किल होनी चाहिए. वो आपने वो सब कुछ सीखा हो, आपने एक ब्लॉग से पढ़कर अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल वैसे ही बना लो, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी राइटिंग में बहुत ज्यादा आगे तक जा सकता है. वो एट द मोमेंट ही अपने आप को बहुत ज्यादा लिमिट कर लेता है कि नहीं नहीं, अब तो मेरे से हो गया और अब मैं यही करूंगा. तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि हर कोई कर सकता है. तो जस्ट आप हर कोई कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई इसके लिए एक बहुत ही अच्छा डिग्री नहीं चाहिए होती है, बट आपके पास स्किल्स होनी चाहिए. डिग्री डजंट मैटर, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए.
या गुड, सो जस्ट लाइक according to you, what is difference between copywriting and content writing? Because recently I interviewed a copywriter, is the guy's great copywriter, Karan Varanasi. वो like बहुत अच्छे कॉपी राइटर है, बिकॉज आई एम रिसेंटली अभी उनका इंटरव्यू लिया था मैंने. तो फिर भी लाइक उनसे फर्स्ट टाइम आई विल टेक इंटरव्यू, तो तब पता लगा यार कॉपी राइटिंग इज डिफरेंट और कंटेंट राइटिंग इज डिफरेंट. देन आई विल इंक्लूड किया बोथ ऑफ नॉट हार्ड, मतलब इतना सा वो होता है ना. देन आई विल गेट यू कि आपने जस्ट अभी वो वर्ड बोला ना कि छोटा सा लाइक कॉफी भी लिखते हैं, तो शायद वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बिकॉज एक कॉफी डिसाइड करता है कि आप फेसबुक का एड चला रहे हो, वो चाहे आप एक लाइन की हेडलाइन आती है लेकिन वो पूरा हेडलाइन डिसाइड करती है कि आपका कंटेंट में लोग एंट्री मारेंगे या नहीं. एग्जैक्टली.
तो कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से. कॉपी राइटिंग होती है दैट पीपल्स को यू नो कन्विंस कर सके कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे. कॉपी होती है दैट यू नो कंपेल्स पीपल्स और टारगेट ऑडियंस टू यू नो जस्ट टेक एक्शंस. ठीक है, और कॉपी राइटिंग में भी दो कॉपी आती हैं बेसिकली, एक मार्केटिंग कॉपी होती है और एक माइक्रो कॉपी होती है. मार्केटिंग कॉपी होती है जो परचेज करने में हेल्प करती है. जस्ट लाइक आपने कुछ एक डिजिटल प्रोडक्ट निकाला या फिर कोई भी प्रोडक्ट निकाला, आपने उस लैंडिंग पेज की जो होती है ना वो कॉपी होती है. जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं ना कि स्क्रॉल डाउन या फिर कुछ भी एक्शन वर्ड्स या कुछ जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं लैंडिंग पेज पे, वो कॉपी होती है. जो कि यू नो किसी भी टारगेट ऑडियंस को या फिर किसी भी एक नॉर्मल व्यूअर को एज अ कस्टमर कन्वर्ट करते, वो कॉपी होती है. और जो आप ब्लॉग्स लिखते हो या आर्टिकल्स लिखते हो, जो डिजिटल प्रेजेंस के लिए लिखते हो आप, वो होते हैं कंटेंट राइटिंग. और कॉपी राइटिंग होती है जो आप के व्यूअर्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हैं. और उसमें भी बहुत पूरा एक, दिस इज वास्ट ओशन, और इसमें आप को अगर आप एक बार ही जाओगे तो बहुत कुछ है सीखने को. माइक्रो कॉपी मेरी फेवरेट है. मतलब माइक्रो कॉपी को लोग इतना अंडरएस्टिमेट करते हैं, बट आई थिंक कि वो बहुत अच्छी और एक बहुत अच्छे लेवल पे कॉपी राइटिंग होती है. और मार्केटिंग कॉपी भी अलग होती है. तो मार्केट कॉपी राइटिंग होती है जो कि हम कस्टमर्स को व्यूअर कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए. और कंटेंट राइटिंग एक डिजिटल प्रेजेंस के लिए होती है.
According to you, अगर किसी को करियर जस्ट स्टार्ट ही करना हो अपना कंटेंट राइटिंग में, तो हाउ कैन स्टार्ट देयर करियर ऑन कंटेंट राइटर की उसको सीखने से लेके और जो लाइक एक जर्नी होती है फर्स्ट क्लाइंट अचीव करने का, क्योंकि वो इनिशियल में सीखते हैं तो फर्स्ट क्लाइंट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर एवरीवन गाइस. क्योंकि पहला क्लाइंट तो एक तरह से वो होता है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो वो फर्स्ट क्लाइंट्स मिलते ही लाइक खुद पे बिलीव हो जाता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तो वो काफी बड़ा मोटिवेशन होता है खुद के लिए.
तो स्टार्ट ये ऐसे ही कर सकते हैं. आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है, आपको बस उस पे लिखना है. स्टार्टिंग में धीरे धीरे लिखकर आपको एनालाइज करना है अपनी गलतियां. आपको एनालाइज करना है उन अच्छे ब्लॉगर्स को, उन अच्छे कॉपी राइटर्स को, जो भी आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आपको एनालाइज करना है उन्हें. आपको उनका स्ट्रक्चर, उनका फ्लो, कैसे उन्होंने कनेक्टिविटी बनाया. अगर आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो, आपको एडा फॉर्मूला आना चाहिए स्टार्टिंग में. एडा फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी राइटिंग में. ऐसे करके आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है. फिर आपको क्लाइंट एग्जीक्यूशन के लिए आपको बस जो भी क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी नीश में रिक्वायरमेंट है, जो भी कैटेगरी है उसकी, आपको उसके लिए आपके पास पहले से कुछ कंटेंट होना चाहिए उसको दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैंने इस फील्ड में ये चीज लिखी है. अगर आपके पास पब्लिश कंटेंट नहीं है तो जस्ट आप उसके लिए सैम्पल कुछ वर्ड्स का लिख दो, कुछ वर्ड्स का सैम्पल लिख दो 200 से 300 वर्ड्स का. एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एज अ बिगिनर लिखने की अलग अलग कैटेगरी में, और सेकंड थिंग कि वो क्लाइंट को भी एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करता है. फिर आप उसके पास धीरे धीरे कुछ प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन जस्ट लाइक माय फेवरेट प्लेटफॉर्म. मैंने भी लिंक्डइन से मैंने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन हाँ मैंने लिंक्डइन से जब से आई हूँ मेरे को लिंक्डइन पे भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं, वहां से भी बहुत ज्यादा अप्रोचेस आई हैं. आप स्टार्ट करो लिंक्डइन पे पोस्ट करना. और सबसे पहली बात, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पहले पोस्ट में ही आपको 1000 ऑफ व्यूज मिलेंगे या फिर इतने सारे रीपोस्ट मिलेंगे या फिर इतना सारा ट्रेंड जाएगा. नहीं, कभी नहीं होता, वो धीरे धीरे करके होगा. स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस देयर, और उसके बाद आप लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, ऐसे फ्रीलांसर साइट हो गई, और अपवर्क हो गया, फेवर हो गया, वहां पे आप अपने साइट अपने प्रोफाइल्स बनाओ. ठीक है, फिर धीरे धीरे करके क्लाइंट एग्जीक्यूशन होने लगेगा, बट आपके पास उतना स्टफ होना चाहिए. तो सबसे पहले आप इन सब चीजों को देख के आप सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो रेडी करो, आप अपनी चीजें रेडी करो. आपके पास होना चाहिए, जब आपके पास क्लाइंट आए तो आपके पास दिखाने के लिए एट द मोमेंट होना चाहिए. बिकॉज अगर आपके पास अभी क्लाइंट आया तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि अपना पोर्टफोलियो एक रात में बना पाओ. तो हाँ, ऑल्दो आप सैंपल लिख सकते हो, लेकिन आपके पास पहले उतना स्टफ होना चाहिए कि क्लाइंट को अपनी अपना कन्विंस करने के लिए स्टफ होना चाहिए. एंड उसके बाद आपका क्लाइंट एग्जीक्यूशन भी होने लगेगा.
Yeah, great. And also we discussed many points. मैंने काफी पॉइंट लिखे हैं जिनमें से जो लाइक मुझे खुद को लाइक सीखने को मिला है काफी. आई एम डेफिनेटली शेयर विद ऑन माय स्टोरी एंड आल्सो टैग जस्ट लाइक फर्स्ट जो भी कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट वी चूज ए नीच ऑनेस्टली जिसमें हमें लाइक लिखना तो पसंद हो. ये नहीं कि एक तो ऐसा चूज कर लिया जिसमें दो लाइन भी नहीं लिख पा रहा हूँ मैं. एंड देन या एंड ऑल्सो देन स्टार्ट लाइक कंज्यूमिंग कंटेंट, क्योंकि बेस्ट वो ये कि जितने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं कंज्यूम एज ए राइटर तो करो, बट कंज्यूम एज ए राइटर, एज ए रीडर भी और एज ए राइटर. या एंड ऑल्सो उसके साथ साथ में काफ़ी नीच पे काफ़ी अच्छा काम करो, साथ साथ पोर्टफोलियो बिल्ड करो खुद का, फ्री में काम करो या फिर गेस्ट पोस्टिंग या एंड मच मोर. काफ़ी चीज़ें जो लिखी हैं बिल्कुल, तो मेरी लिस्ट काफ़ी लंबी हो गई है. एंड also other one and hi guys and let's connect with Janvi, and Janvi is available on also LinkedIn, available also Instagram and Facebook.
Mostly LinkedIn mein active.
Yeah, mostly guys, so let's connect with this guy. He's sharing amazing content on LinkedIn, and also I'm not check your actually LinkedIn profile, I'll check your Instagram profile. You share all this stuff are amazing. Just like, हाँ, just like मेरा ना जो like show में जो purpose होता है ना, वो ये नहीं होता है कि just like लोगों के followers देख लिया कि ठीक है लोगों को 4000 followers, लोगों के 5000 followers हैं. Just like मेरा purpose उनकी लोगों को चाहे फॉलोवर्स नहीं हो बट उनको नॉलेज कितना है वो कितना डिलीवर कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट होता है कि जिसको भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ वो लोग इंटरेस्टेड है क्या लोगों को नॉलेज डिलीवर करने में, तो वो मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आपको नॉलेज है बट आप इतना इंटरेस्टेड नहीं हो उसको डिलीवर करने में. तो दैट्स आई ऑनेस्टली आई आप में सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी है कि यू आर ओपन टू शेयर योर नॉलेज बिल्कुल कि हाँ, एंड आल्सो यू आर प्रूफ कि यू आर पैशनेट अबाउट राइटिंग, यू आर लव योर लाइक योर कंटेंट एंड योर राइटिंग्स, एंड वो आप में दिखता है जब आप बात करते हो, आप बोलते हो या. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी एंड आई होप हम नेक्स्ट सीरीज भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? काफी और काफी या, बिकॉज कंटेंट राइटिंग इज अ बिग एक बड़ा टॉपिक है, उसको लाइक एक एपिसोड में मैं नहीं कवर कर सकता या. बिकॉज आल्सो कल आई एम आल्सो टेकिंग अदर कंटेंट राइटर है, उनका इंटरव्यूज एक और है, इज लाइक अमेजिंग, वो लोकली है मेरे यहीं के जयपुर के, आल्सो सुपर कंटेंट राइटर. आई एम डेफिनेटली शेयर विद यू दिस एपिसोड. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गाइज फॉलो दिस जहांवी एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. आई एम अमेजिंग, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके यार.
Thanks a lot.
Stop recording. Wait.